أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الخامس من المرحلة الرابعة في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد وبطلان القول بالأولوية. آج ہماری بحث فلسفے کی اساسی ترین قاعدے میں ہے کہ جس کو قاعدہ ضرورت بھی کہتے ہیں، اور اس کو جبر فلسفی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں جو متکلمین یا فقہا ہیں، وہ اس قاعدے کو جبر فلسفی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. قاعدہ انتہائی اساسی ہے اور قاعدہ علیت کے ساتھ مرتبط ہے، جو ہم بعد میں پڑھیں گے. بعد میں ہم ثابت کریں گے کہ اس کائنات میں جو نظام ہے وہ علیت و معلولیت کا ہے، یعنی ہمیشہ کوئی چیز کسی چیز کے لیے علت بنتی ہے. بدون علت کوئی بھی چیز خارج میں تحقق پیدا نہیں کرتی. یہ اس کائنات کا نظام ہے، قانون ہے، قانون عام ہے، اور کوئی بھی چیز اس سے خارج نہیں ہے. اس بحث کو سب سے پہلے فلاسفہ نے شروع کیا، کیونکہ فلاسفہ نے دلائل عقلیہ کے ذریعے جب نظام علیت کو ثابت کیا تو نظام علیت کے اندر پھر یہ والا قاعدہ آتا ہے کہ پس علت و معلول کے درمیان رابطہ ضرورت کا ہونا چاہیے، وجوب کا ہونا چاہیے. لیکن جب متکلمین نے آ کر اس قاعدے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو اگر مان لیں تو پھر تو جبر لازم آتا ہے، چونکہ جیسا کہ ابھی بیان ہوگا، چونکہ اس قاعدے کا مفاد یہ ہے کہ اگر علت ہے تو معلول حتمن ہونا چاہیے، تو معلول حتمن ہونا چاہیے تو یہ جبری تو ہے. پس جب متکلمین نے دیکھا کہ یہ قاعدہ جبر کی طرف لے کر جا رہا ہے، خدا کا مجبور ہونا لازم آتا ہے، انسان کا مجبور ہونا لازم آتا ہے، اور جبر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، پس انہوں نے اس قاعدے کی مخالفت شروع کی. میں عرض کروں گا، بیان کریں گا، اس کو بیان کرتا ہوں ابھی، تھوڑا طرح مسئلہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ متکلمین نے آ کر مخالفت اس وجہ سے، اس حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کی، اور اس کے مقابلے میں ایک الگ قاعدہ تاسیس کیا کہ جس کو قاعدہ اولویت کہا جاتا ہے، کہ اس کی بھی وضاحت ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوگی. اس مسئلے کو اگر بیان کریں، کیوں بیان کر سکتے ہیں ہم آ کر، یعنی چند مراحل ہم پیچھے طے کر کے آئے ہیں. مثلا پہلے ہم نے وجود کی قسم کی، وجود یا واجب الوجود ہوتا ہے یا ممکن الوجود ہوتا ہے. درست ممتنے کے بارے میں کہا کہ یہ استطرادی ہے، حقیقت میں وجود کتنے ہیں؟ دو قسم کے ہیں، یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے. پس تقسیم کرنے کے بعد ہم نے یہ نتیجہ لیا کہ ممکن الوجود ہے، واقعیت رکھتا ہے، موجود ہے خارج میں. جب ممکن کی ہم نے تحلیل کی تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ممکن متصابیت النسبہ ہوتا ہے، یعنی ممکن کو ممکن اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ وجود و عدم کی نسبت متصابی ہوتا ہے. یعنی اگر اس کو سادہ زبان میں اگر عرض کروں تو یہ ہے کہ ممکن کا کسی کے ساتھ بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتے داری کسی سے نہیں ہے، اس کے لیے سب انجان ہے. نہ وجود اس کے لیے کوئی رشتے داری رکھتا ہے، نہ ہی عدم. یعنی آپ اگر ایک خط کھینچیں، उस खत का जो वसत है उसको मद्देनजर रखें, तो जिस तरीके से वो वसत वाला नुक्ता बराबर है अपने दोनों अतराफ के, इसी तरीके से आप तसव्वुर में अपने जहन में तस्वीर बना सकते हैं कि इम्कान भी इसी तरीके से माहियत मुतसावियत नस्बा है, यानी उसका किसी की तरफ झुकाव नहीं है, किसी से रिश्तेदारी नहीं है उसकी, बराबर हैं दोनों। अगर इस तरफ 50% है तो इस तरफ भी क्या है 50% है। बस जब ये मुतसावियत नस्बा है, अब अगर जब हमने ये देखा, देखने के बाद फौरन अकल में आ जाता है कि अगर ये माहियत खारिज में आना चाहती है तो इल्लत की जरूरत है इसको, क्योंकि ये माहियत वजूद की निस्बत कोई तमायल नहीं रखती, कोई झुकाव नहीं रखती, कोई रिश्तेदारी नहीं रखती उसके साथ, यानी उसकी जात वजूद से खाली है। बस अगर ये माहियत आना चाहती है वजूद के अंदर तो हतमन वजूद किसने अता करना है उसको, खालिद इल्लत ने अता करना है, इल्लत आएगी बाहर से, कोई बाहर से आकर उसको वजूद देगा क्योंकि उसकी जात से खाली है वजूद, वजूद उसकी जात में नहीं है, बस बाहर से कोई आकर दे इसको। मतलब जैसे आप है, आपके पास अगर पैसे नहीं है, आपके पास पैसे कहां से आएंगे, कि जब आपको कोई देगा आगे तब पैसे आएंगे। माहियत माहियत की जेब खाली है, वजूद नहीं है उसके पास, तो आप वजूद कोई देगा बाहर से आकर तब जाके उसको वजूद मिलेगा और ठाकू की खारजी पैदा करेगी। बस जब हमें ये बात समझ में आ गई कि मुतसावियत नस्बा से हम इल्लियत की तरफ आए कि खारिज में इसको वजूद तब मिलेगा जब इल्लत हो कोई बाहर से, इससे निजाम इल्लियत व मालूलियत साबित हो जाती है कि इस कायनात में क्योंकि सारे मुमकिनात हैं और मुमकिन का लाजिमा माहियत है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे भी, और हर मुमकिन जो है वो माहियत रखता है और माहियत जो है वो मुतसावियत और नस्बा है, बस मुमकिनात को वजूद अता करने वाली इल्लत कोई खारजी है, उसकी अपने अंदर कोई चीज मौजूद नहीं है, बस निजाम इल्लत और मालूल का है, बाहर निकाले उसको, मुतसावी होने से, मुसावी होने से बाहर निकाले, खुद तो वो निकल नहीं सकती क्योंकि झुकाव नहीं है उसका किसी के तरफ, कोई धकेलेगा उसको वजूद की तरफ, वजूद अता करेगा उसको, जो भी आप ताबीर इस्तेमाल कर लें। बस मालूम हुआ कि इस कायनात पर जो कानून हाकिम है वो इल्लियत का है। अब ये वाली बात यहां जिक्र होती है, इल्लत और मालूम के दरमियान राबता कैसा है, ये अब हमारी फसल की बहस है। ये बात हमें समझ में आ गई कि इस कायनात में मुमकिनात मौजूद हैं, मुमकिनात जो है मुतसावियत और नस्बा को कहा जाता है, और ये वजूद में आने के लिए इल्लत के मोहताज हैं, बस इनकी कोई इल्लत है और ये उसके मालूल हैं। बस मालूम हुआ कि निजाम कायनात निजाम इल्लत और मालूल का है। अब बहस यहां पर होती है इल्लत और मालूल के दरमियान क्या रब्ता है, आया इल्लत और मालूल के दरमियान जरूरत और वजूब का रिश्ता है, यानी क्या मुराद, यानी अगर इल्लत आ जाए तो मालूल का आना हतमी है, नहीं हो सकता कि इल्लत हो लेकिन मालूल ना हो, मुहाल है, अकलन मुहाल है,
इल्लत नहीं है।
हाँ, वो इल्लत नहीं है। ऐसी ऐसे राबते को राबते जरूरत कहा जाता है, राबता वजूब कहा जाता है, यानी वाजिब है कि इल्लत के होते हुए मालूल होना चाहिए, लाजमी है, जरूरी है कि अगर इल्लत है तो मालूल होना चाहिए, और दूसरी तरफ से भी अगर मालूल है तो इसकी इल्लत भी होनी चाहिए। असल मुमकिन नहीं है कि मालूल हो लेकिन इल्लत उसकी मौजूद ना हो। बस राबता जरूरत को अगर हम मिसाल देना चाहें, बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं कि अगर आग मौजूद हो तो हरारत जो कि मालूल है उसका होना हतमी है, नहीं हो सकता कि आग मौजूद हो लेकिन हरारत मौजूद ना हो, इसको कहते हैं राबता जरूरत। या क्या है, इल्लत और मालूल के दरमियान राबता जरूरत का नहीं है बल्कि क्या है, औलवियत का है, मुतकल्लमीन ने जो नाम दिया है, यानी क्या मुराद औलवियत का, اولویت والے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علت اور معلول کے درمیان رابطہ ضرورت نہیں ہے بلکہ کیا ہے اولویت کا، یعنی کیا مراد، یعنی یہ جو معلول اپنی ذات میں متساویت النسبہ ہے، اگر یہ حد استوا سے خارج ہو جائے، حد استوا سے خارج ہو جائے، میں مثال کے ساتھ چلتا ہوں، ہم نے کیا کہا، آپ فرض کریں کہ ایک درمیان والا نقطہ ہے وہ ماہیت ہے، اور وہ اپنی اس کے دونوں طرف وجود و عدم ہیں، دو خط ہیں اس کے، اپنے ذہن میں خط کے طور پر اس کو سمجھیں، اب وجود کی طرف نسبت بھی اس کی 50% ہے اور عدم کی طرف بھی اس کی نسبت کیا ہے 50% ہے، اب یہ ماہیت چاہتی ہے کہ خارج میں آئے، یعنی علت چاہتی ہے کہ اس کو خارج میں لے کر آئے، خداوند چاہتا ہے کہ یہ ماہیت خارج میں آئے، کیا کرے، ماہیت کو حد استوا سے خارج کر دے، کیسے، ماہیت جو وجود کی نسبت 50% رکھتی تھی، یعنی کوئی تمایل نہیں تھا اس کا وجود کی طرف، اس کو رجحان دے دے وجود کی طرف، لیکن ضرورت تک نہ پہنچے، یعنی کیا مراد، یعنی اس کو 90% تک لے آئے، اس کو 95% تک لے آئے، کافی ہے اتنا، اگر ماہیت حد استوا سے نکل کر مساوی ہونے کی حالت سے نکل کر اگر یہ 80, 90, 95% بھی بڑھ جائے وجود کی طرف تو یہ متاثر ہو سکتی ہے، ضرورت کی ہے ہی نہیں ضرورت یہاں پر کہ وہ وجود کے مرحلے، وجود کے مرحلے سے مراد کیا ہے، وجود سے مرحلے سے مراد یہ ہے کہ ماہیت حد استوا سے نکل کر وجود کی طرف 100% آئے، اصلا عدم کا امکان باقی نہ رہے، میں عرفی مثال سے اس لیے لے کے چل رہا ہوں تاکہ مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، مثلا یہ ماہیت بالکل 100% وجود کی طرف آ جائے، نہ یہ کہ جھکاؤ پیدا کر لے، یعنی ماہیت حد استوا سے تھوڑا سا یوں آگے گزر جائے، مطلب اور کہیں چونکہ یہ آگے آ گئی ہے وجود کی طرف، پس عدم سے دور ہو گئی ہے، پس اس کو موجود ہونا چاہیے، عرض کرتا ہوں ابھی مطلب مفہوم سمجھ لیں کہ متکلمین کیا کہتے ہیں، فلاسفہ کیا کہتے ہیں، ابھی نقد آئے گا اس کے اوپر، بس رابطہ ضروری کیا کہہ رہا ہے کہ ماہیت حد وسط سے یا متساوی کی حالت سے نکل کر 100% وجود تک پہنچ جائے، عدم کے تمام راستے بند ہو جائیں، عدم کا ایک دروازہ بھی نہ کھلا ہو تاکہ ماہیت اس دروازے میں نہ چلی جائے، مطلب سب دروازے عدم کے بند ہونے چاہیے، اس کو کہتے ہیں رابطہ ضروری، یعنی علت آ گئی تو وجود حتمی ہے اس کا معلول کا، لیکن رابطہ اولویت کیا کہہ رہا ہے، رابطہ اولویت یہ کہتا ہے کہ ماہیت فقط یہ کہ وجود کی طرف تمایل اختیار کر دے کافی ہے اس سے موجودیت کے لیے، 100% یعنی عدم کے تمام دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر عدم کے دروازے 100 ہیں تو 90 دروازے بھی بند کرنے تو یہ خارج میں تھاپو پیدا کر سکتی ہے، اور بھی مثال دے رہا ہوں اللہ ایسا نہیں، خوب ابھی مسئلے کو تصویر کریں آہستہ آہستہ، وہ کہتے ہیں اللہ بیر بیر فارسی والے کہتے ہیں، یعنی آپ کو دو رابطے سمجھ میں آ گئے، کوئی ابہام تو باقی نہیں رہا، فلاسفہ کہتے ہیں کہ علت اور معلول کے درمیان رابطہ ضرورت کا ہے، یعنی اگر ماہیت خارج میں آنا چاہتی ہے تو عدم کے سارے دروازے بند کرنے پڑیں گے، اگر علت ہے تو حتمن ہے و ضروری ہے کہ معلول وجود میں آئے، لیکن متکلمین کہتے ہیں کہ علت و معلول کے درمیان رابطہ اولویت کا ہے، اولویت یعنی رجحان رکھنے والا رابطہ ہے، ماہیت کے لیے اگر یہ خارج میں آنا چاہتی ہے تو دروازے عدم کے سارے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کہ اس نے رجحان پیدا کر لیا وجود کی طرف، یہ رجحان کافی ہے اس کو خارج میں لانے کے لیے، یہ رابطہ اولویت ہے، اور عرض کیا کہ متکلمین کیوں مجبور ہوئے رابطہ اولویت کی طرف، مثلا कहते हैं मुतकल्लमीन ने कहा कि बाबा अगर फलासफा आपकी हम बात मान ले तो खुदा क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। यानी क्यों, यानी आप में आप इतने तो कायल हो रहे हैं कि खुदा बंदे मुताल इस कायनात की इल्लत है, दुरुस्त है, ये कायनात मुमकिन है, खुदा ने इस कायनात को खल्क किया। जब खुदा ने इरादा कर लिया कि इस कायनात को खल्क करे, खुदा की जात और खुदा का इरादा दोनों मिलके क्या हुए, इल्लत ताम बने, किस चीज की, कायनात की खिलकत की। पर इसका मतलब है कि अगर खुदा की जात हो और वो इरादा कर ले तो कायनात का खारिज में आना हतमी व जरूरी है। कहते हैं फिर खुदा मुख्तार नहीं रहेगा। मुख्तार उसको कहते हैं जो हर हालत में फिल और तर्क पे कादिर हो। यानी कादिर किसे कहते हैं, मुख्तार किसे कहते हैं, हर हालत में मेरे सामने जो भी कोई फेल आए मैं उसके बारे में कहा जा सकता हूं, ये चाहे तो कर सकता है चाहे तो नहीं कर सकता। इसको कहते हैं ये मुख्तार और कादिर है। यानी हम फेल पे कादिर है, हम तर्क पे कादिर है, तर्क पे भी कादिर है, फेल पे भी कादिर है, अंजाम देने पर भी कादिर है। लेकिन अगर आपकी फलासफा हम बात मान लें, आप तो कह रहे हैं कि अगर इल्लत ताम हो जाए तो मालूल का होना हतमी होता है, उसका मतलब है कि फिर खुदा जब अगर इरादा कर ले कायनात को खल करने का तो फिर क्या है, कायनात का आना हतमी है। इसका मतलब है कि तर्क पे कादिर नहीं है, तो खुदा मजबूर हो गया। ये नकद है उनके ऊपर, लेकिन जो वो कहना चाहते हैं वो ये है।
मतलब लेकिन वो जैसे कामों को तोड़ने का भी इख्तियार रखते हैं ना
सर। आप कहता हूँ इसको
इख्तियार इरादे तो है ना
जी,
इख्तियार तो इरादे नहीं है ना।
मैं आप करता हूँ, ये मतलब समझ आ गया। मुतकल्लिमीन ये कहना चाहते हैं कि अगर हम राबता जरूरत के कायल हो गए तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि खुदा नाउज़ु बिल्ला मजबूर है अपने अफ़आल के अंदर, इंसान खुद भी मजबूर हो जाएगा। मसलन मैंने इस वक्त क्या है इरादा किया है कि मैं बोलूं, तमाम शराइत जब पूरी हो गई तो अब मेरा बोलना हतमी है, तो इसका मतलब मैं बोलने में क्या हूं, मजबूर हूं, मुख्तार नहीं हूं। मैं मुख्तार तब होता, चाहूं तो बोलूं चाहूं तो ना बोलूं, लेकिन अब जब तमाम शराइत पूरी हो गई तो अब मेरा बोलना हतमी हो गया है, बस मैं बोलने में मजबूर हूं। तो फाइल को खुद इंसान भी मजबूर हो गया और खुदा भी मजबूर हो गया। बस कायदा है ये जो इन शय अम्मा लम यजिब लम यूजद, ये कायदा बातिल है, ये कायदा दुरुस्त नहीं है। इसी वजह से मुतकल्लमीन इंसान को अपने अफआल का फाइल कहते हैं, इल्लत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। फाइल इंसान अपने अफआल का फाइल है, नहीं कहते इंसान अपने अफआल का इल्लत है, अपने अफाल की इल्लत है। क्यों, उसको पता है कि इल्लियत का तो इसमें बू आती है जाबर की, लेकिन फाइल इसके अंदर बू जाबर की नहीं है। हाँ ये फाइल है ना, खुदा का नहीं जा रहे अभी, हम फकत उसके इरादे और इन चीजों को दे। मैं खुद खुदा के बारे में सवाल है, यानी खुदा वो इल्लत इस मुतकल्लिम, इसलिए खुदा को इल्लत नहीं कहते। अभी भी मुतअद्दिद उलमा व फुकहा मौजूद हैं जो खुदा को इल्लत नहीं कहते, कहते हैं चूंकि खुदा को अगर इल्लत कहेंगे तो इल्लियत में जबर आता है, दरवाजा बंद करने, जबर लाजिम आता है, जबर की बू आती है इसके। बस ताबीर ही ऐसी इस्तेमाल करें कि जो जबर की तरफ जहन को ना लेकर जाए। कहते हैं उसकी बेहतरीन ताबीर जो है फाइल की है। आप कहें कि खुदा फाइल है इस कायनात का, इंसान अपने अफआल का फाइल है। बात समझ में आई है, यह है दावा मुतकल्लमीन का और फलासफा का। मसलन मैं एक और मिसाल आपको देता हूं, आपको प्यास लगी है, आपने पानी पीने का इरादा किया है, आप उस इरादे की वजह से उठे हैं, उठकर आप पानी तक पहुंचे, गिलास पानी का भी आपने उठा लिया, सब क्या है, इल्लत नाकिसा है। आपको प्यास लगना इल्लत नाकिसा है, कि बहस करेंगे हम बाद में जाके इल्लत तामा इल्लत नाकिसा क्या है मुस्लिम। आपका चल के जाना पानी की तरफ इल्लत, एक एक इल्लत का जुज है। गिलास के अंदर पानी डालना एक इल्लत का जुज है। गिलास को उठाना इल्लत का एक और जुज है। फिर आपका अपने मुंह के करीब लाना, ये एक इल्लत की और इल्लत है। लेकिन अब जब आपने इतना करीब कर लिया और इरादा कर लिया कि अब मैंने पानी पीना है, जब इरादा कर लिया आपने पानी का, मैंने पीना ही पीना है, तो इस इरादे के फौरन बाद आप पानी पिएंगे या नहीं पिएंगे, हतमन पिएंगे। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो इसका मतलब है कि इस हालत में आपने पीने का इरादा ही नहीं किया था। जरूरत का रास्ता है, जब इल्लत ताम हो जाए, तमाम शराइत पूरी की पूरी उस फेल को अंजाम देने के लिए हासिल जब हो जाए, तो मालूम मुनाफिक होना। जैसे भी मिसाल दी, इसके अलावा और बहुत, मैं चाहता हूं इस किताब को उठाऊं, मैंने पहले देखा, देखकर हाथों को बढ़ाया, किताब को पकड़ा और उठाने का इरादा कर लिया। अभी उठेगी या नहीं उठेगी? उठेगी। अगर नहीं उठेगी तो अगला बंदा ये कहेगा तुमने अभी उठाने का इरादा ही नहीं किया। अगर तुमने इरादा किया होता तो हतमन उठा लेते। ये तमाम शराइत और कमाने की बात है भाई ना, हर चीज जो हो जाए तो उसमें ये चीज आ जाएगा। मैं इख्तियारी अफआल की मिसाल दे रहा हूँ रास्ता जरूरी समझाने के लिए, उसकी वजह क्या है अभी अर्ज करता हूँ। बस पानी की मिसाल दी आपको, किताब उठाने की मिसाल दी आपको, इस तरीके से आप चले चलते जाए। इसमें मुतकल्लिमीन ने एक और थोड़ी जो आप कह लें कि जीरकी करते हैं मुतकल्लिमीन, और आजकल के भी जो हमारे तशय्यों में भी मुतकल्लिमीन जो मौजूद हैं, जो या तो फलसफे के मुखालिफ हैं या क्या हैं, कलाम की तरफ झुकाव ज्यादा रखते हैं, उन्होंने आकर यानी पुराने, ये बात पुराने मुतकल्लिमीन ने किया और आज उसको कबूल किया जाता है। मसलन आयतुल्लाह खोई कबूल करते हैं, मकतबे तहकीक वाले कबूल करते हैं, जितने फुकहा हैं अपने दर से खारिज में इन्हीं बातों को नकल करते हैं। क्या है, कहते हैं राबता जरूरत, हम इंसान से हटकर जितने मौजूदात हैं उनमें मानते हैं, यानी आग का हरारत देना राबता जरूरी है, पानी का ठंड पहुंचाना राबता जरूरी है, दुरुस्त है, सूरज का गर्मी देना राबता जरूरी है, जितनी भी ये चीजें गैर इंसान इस कायनात में मौजूद है उसमें हम इल्लियत को कबूल करते हैं और इल्लत और मालूल के दरमियान जो राबता जरूरत है उसको कबूल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गैर इरादी है। आग हरारत इरादे के साथ देती है, बेदून इरादा देती है, बेदून इरादा देती है, बस हमारा राबता जरूरत मुश्किल नहीं रखता। पानी बगैर इरादे के ठंडक पहुंचाता है, यानी वो इरादा फाइल इरादी तो नहीं है वो, बस वहां रास्ते जरूरत का कायल होना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जहां फाइल मुख्तार की बात आए वहां पर रास्ते जरूरत नहीं है। क्यों? अगर रास्ते जरूरत के कायल हो गए तो फिर वो जब लाजम आ जाएगा। इंसान और आग में फर्क होना चाहिए, ये वो तकल इस तरह है। बस वो तफकी के कायल हो गए कि रबता जरूरत फवाइल तबीया के अंदर मौजूद है। फवाइल तबीया से मुराद यानी गैर इंसान जो फाइल मजबूर हैं, फाइल मुख्तार नहीं है, जैसे आग है, जैसे पानी है या इस किस्म की जो बाकी मौजूद हैं, उनके अंदर रबता जरूरत है। लेकिन जो फाइल इख्तियारी हैं, जो फाइल मुख्तार हैं, जैसा कि खुदा है, जैसा कि इंसान है, ये फाइल मुख्तार हैं, इनमें रबता जरूरत नहीं पाया जाता। इल्लत मालूम का रबता जरूरत वाला नहीं है और उसमें क्या है औलवियत के काले, जैसे कि मैंने उसको बयान कर दिया वाजे करके। अब थोड़ा हम तहलील करते हैं आकर, असल में मुश्किल क्या है यहां पर, अगर इन फुकहा की और मुतकल्लमीन की इबारतों को आप देखें, उनकी गुफ्तगू को सुने, तो वो इरादे को इल्लत का जुज नहीं मानते। यानी अगर मैंने पानी, अगर मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी का मुझे पानी पीना है, अपनी प्यास बुझानी है, तो इसमें इल्लतें कौन कौन सी चीजें हैं? मुझे प्यास लगना, मेरा हरकत करना, पानी के पास जाना, पानी गिलास में डालना, गिलास को उठा के अपने करीब लेकर आना, ये सब इल्लतें हैं। इल्लत अब तमाम हो चुकी है क्योंकि आपने सब शराइत को पूरा कर दिया है। अब आप चाहें तो पिए, चाहें तो ना पिए, इल्लत तमाम है, इल्लत तामा मौजूद है, लेकिन आप इस इल्लत तामा के होते हुए चाहे तो करें, चाहे तो ना करें। बस मुतकल्लिमीन और फुकहा क्या कहते हैं? इरादा जुज़ ले इल्ला नहीं
नहीं।
है। फलासफा क्या कहते हैं? इरादा जुज़ ले इल्ला, जब तक इरादा आप नहीं करेंगे, इल्लत नाकिस है, इल्लत ताम नहीं हुई है। बस ये फर्क है इख्तिलाफ का। ये किताब में नहीं है, मैं पहले से आपको अर्ज कर रहा हूं ताकि आप जब मुताला करें किताबों का तो ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। बात बाजू हुई है। बस फलासफा कहते हैं कि इरादा जुज़ुल इल्ला है, और ये तो हर कोई कबूल करता है कि इंसान एक दफा इरादा कर ले तो काम हो जाता है। इरादा अगर तर्क कर दे तो इल्लत तामा खत्म हो जाती है। मतलब एक बंदा कहता है मैं पानी को, गिलास को अपने करीब लाया, पानी पीने का इरादा रखता था, पानी नहीं पिया। अब पानी ना पीने को आप क्या तफसीर करेंगे? क्या आपने पीने का इरादा ही नहीं किया? देखने वाला यही कहेगा कि क्योंकि अगर तुमने इरादा किया होता पानी पीने को और तुम मुंह के करीब भी गिलास को लेकर चले गए फिर भी नहीं पिया, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पीने का इरादा रखते थे लेकिन तुमने नहीं पिया। अगर वो कहे कि नहीं नहीं मैं तो इरादा रखता था लिहाजा नहीं, फिर भी मैंने नहीं पिया, हम कहेंगे तुम कह रहे हो कि मैंने इरादा किया था नहीं पिया, हकीकत में तुम्हारा इरादा ही नहीं था। जाबर का अर्ज किया, जाबर की वजह से, क्योंकि इरादे को वो कहते हैं इल्लत तामा अगर मालूल को हतमन चाहती है तो जबर लाजिम है। ये तबयीन करने के बाद आप और ये इतना बदीही कायदा भी अब नहीं रहा, आयतुल्ला फैयाजी जैसा फैलसूफ आदमी भी इस कायदे के मुनकर हैं। उन्होंने पूरी किताब लिखी है, आप पढ़ सकते हैं उसको, जबरे फलसफी के नाम से छप चुकी है। तो बहरहाल जो इद्दआ एक इस विदाया की हद तक था आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है, तफासिल इंशाल्लाह आप बाद वाली किताबों में आहिस्ता आहिस्ता इसको हल करेंगे। देखें अब इबारत को, ला रैबा अन्नल मुमकिना, मुमकिन की तारीफ क्या है? अल्लज़ी यतसावा निस्बतुहु इलल वुजूदे वल अदमे अक्लन, मुमकिन की तारीफ करते हैं, मुमकिन वो है कि जिसकी निस्बत वजूद और अदम की तरफ मुसावी है। और ये जो बात हम कह रहे हैं कि अकलन है, ऐसा नहीं है कि खारिज में माहियत मौजूद है और वजूद और अदम मसलन बराबर बराबर है, इसके लिए कि अकली तहलील के मुताबिक हम कह रहे हैं, यानी मुमकिन को जहन में अगर हम तहलील करें, को खारिज भी या वाजिब उल वजूद है या मुमतन उल वजूद है, अगर है तो वाजिब उल वजूद है, नहीं है तो मुमतन उल वजूद है, दो हालत से खारिज नहीं है, ये तीसरी हालत कहां बनती है? जहन में, खारिज में तीसरी हालत नहीं है। बस में आइए आपका जी, यानी खारिज में फकत दो ही हालतें हैं, अगर है तो वाजिबुल, मैं मसलन आप मसलन वाजिबुल गैर है, वो जहन में रखें वाजिबुल गैर है सर, वाजिबुल वजूद एक ही है बिलज़ात जो है, अगर मैं आ जाऊं तो वाजिबुल वजूद हूं, अगर मैं नहीं था तो मुमतनिल वजूद था, क्योंकि मेरी इल्लत ही नहीं थी तो मैं खारिज में कैसे आ सकता था, तो अगर मैं आ जाता इल्लत के बगैर तो मुहात था वो, असल बेदून इल्लत आ नहीं सकता। बस हमने पीछे पढ़ा मुमतनिल बिल गैर क्या कहा था, मालूल बेदून इल्लत नहीं आ सकता, मुमतने है पर मुमतने बिल गैर है। बस खारिज के एतबार से अगर देखें, मुमकिन या वाजिब उल वजूद है या मुमतने उल वजूद है, लेकिन जहन में अगर हम इसको लेकर तहलील करते हैं आकर, तीसरी सूरत भी बन जाती है, क्या कि अगर इसकी जात को मद्देनजर रखें तो मुमकिन अपनी जात में ना वजूद रखता है ना अलग रखता है। यानी मुमकिन की जात न वजूद को चाहती है ना अदम को चाहती है, वो न्यूट्रल है, वो कहती है मुझे जो मर्जी दे दो, मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे वजूद देना दे दो, अदम देना है दे दो, लेकिन मेरे अंदर कोई सजा नहीं बया जाता, मेरे अंदर कोई तमायल नहीं है किसी की तरफ से। वही ना, मुमकिन 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 बिजार वाजिब वजूद बिलगैर है अपने तहकुक के एतबार से। खूब, ये मुमकिन क्या है, यतवक्कफ वजूदहु अला शैइन, ये मुमकिन जो है अपने वजूद में, इसका वजूद मौकूफ है किसी शय पर, किसी इल्लत पर, क्योंकि ये मुतसावियतुन निस्बा है, अगर वजूद में आना चाहता है तो कोई इल्लत हो जो इसको बाहर निकाले। यतवक्कफ वजूदहु, इस मुमकिन का वजूद मौकूफ है किस पर, अला शैइन, एक ऐसी शय पर कि युसम्मा इल्लतन, के जिसको इल्लत कहा जाता है। वह अदम हु, और इसका अदम भी मौकूफ है किसके ऊपर, अला अदम इल्लत, क्योंकि
जब आ गए तो लाजिम अब पीछे वाले का अदम करना तो पीछे
होना चाहिए, अदम इल्ला काफी है, यानी आप आपके मादूम होने के लिए क्या काफी था जब आप खारिज में नहीं आए थे, इल्लत तामा ना हो, वो शराय जो आपके वजूद के लिए थी वो ना है, आप अदम में ही रहेंगे, बता दे आप अदम में ही रहेंगे, बस कहा कि अदम, उसका अदम मौकूफ है अदम इल्लत के ऊपर, इल्लत ही ताम ना हो उसकी, क्योंकि आप मादूम तो थे ही पहले, अब मादूम ही में रहे उसका क्या है तरीका कि इल्लत ताम ना हो, बात बात हुई है। कहते हैं यहां तक तो हमें बात समझ में आ गई है, आगे वहल ये तवक्कफ वजूद मुमकिन अला अंतूजब इल्लतो वजूदहु او انه يوجد بالخروج عن حد الاستواء وان لم يصل الى حد الوجوب, بحث ہماری اس فصل میں اس باس میں ہے, علت معلوم کرنے میں رابطہ کیا ہے, آیا ممکن کا وجود موقوف ہے اس بات پر کہ علت وجود کو واجب کرے, ان توجب العلت وجوده, کہ علت جو ہے اس کے وجود کو, معلول کے وجود کو واجب قرار دے, وَهُوَ الْوَاجِبُ وُجُوبُ بِالْغَيْرِ, کہ وہ وجوب کیا ہوگا جو دے گی اس کو, وہ وجوب بالغیر ہوگا کیونکہ واجب بالذات ایک ہی ہے, یہ والا رابطہ ہے, اس کو رابطہ ضرورت کہتے ہیں یا رابطہ وجوب کہتے ہیں, او یا انہو یوجدو بالخروج عن حد الاستواء, یا کیا ہے وہ موجود ہو جائے گا کس کے ساتھ, فقط وہ حد استواء سے نکل آئے, اولویت والی بات ہے, یعنی فقط وہ متساوی تو نسبت سے باہر نکل آئے بس کافی ہے, وَإِن لَمْ يَصِلْ إِلَى حَدِّ الْوُجُودِ, حد وجود تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی تمام دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے آدم کے, کچھ دروازے بھی بند ہو جائیں اور وجود کی طرف قدم بڑھا دے وہ تو کافی ہے اس کا خارج میں آنا, وَقَدَ الْقَوْلُ فِي جَانِبِ الْعَدَمِ, کہتے ہیں یہی تحلیل اب آدم کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں کہ آیا عدم علت اور معدوم کے درمیان رابطہ جو ہے وہ ضرورت کا ہے یا اولویت کا ہے, بہرحال ہمارا سروکار کیونکہ زیادہ وجود کے ساتھ ہے اسی سے بحث کرتے ہیں, کہتے ہیں اس رابطے کو کیا نام دیتے ہیں, وہو المسمی بالاولویہ, اس کو اولویت کا نام دیتے ہیں, وقد قسموها الى الاولویت الذاتیہ, اس کے بعد یہ اولویت کی اقسام بیان کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر متکلمین پہ رد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اللهم صل على محمد.